कफीर, सूरत रूम मक्की सूरत है, इसके 6 रुकू और 60 आयात हैं। अल्फाज और कलमात की तादाद 827, हुरूफ की तादाद 3547 है और पहली ही आयत के लफ्ज गुलिबतिर रूम से इसका नाम जो है वो लिया गया है। और इस सूरत का जो जमाना नुजूल है, ये जो सूरत अंकबूत का है ना, वही इसका जो है वो जमाना नुजूल है। और ये जो सूरत है, देखें कि इसका नाम और सूरत अंकबूत का कुरानी नाम भी है एक, और वो क्या है, दोनों का नाम अलिफ लाम मीम। दोनों सूरतें जो हैं वो इसी से, अलिफ लाम मीम से इनका आगाज होता है। और सूरत अंकबूत जो है, कहते हैं कि सूरत रूम सूरत अंकबूत का मुसन्ना है, जोड़ा है। दोनों का कुरानी नाम भी अलिफ लाम मीम है और फिर दोनों के जो मरकजी मजमून में भी कोई खास फर्क नहीं है। वहां पे भी मुसलमानों को नुसरत इलाही और गलबे की खुशखबरी दी गई थी और तौहीद के लिए कायनात से दलाइल, रसूलल्लाह और सहाबा को तसल्ली दी और बताया कि दुनिया के बाद आखरत है और हक है और अदल है। तो यहाँ पे भी इस तरह का मजमून जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमाते हैं। आगाज बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही बेहतरीन है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम के मानी अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। और जो खास बात है वो क्या है कि ये इस सूरत का असल कुरानी नाम है, यही पिछली सूरत का भी नाम है। और दोनों सूरतों के मरकजी मजमून में, अमूद में कोई खास फर्क नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं अलिफ लाम मीम कहने के बाद, गुलिबतिर रूम, रूमी मगलूब हो गए। तो गुलिबत जो है, आप देखिए कि ये माजी मजहूल है, तो गोया के यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि रूमी जो हैं वो मगलूब हो गए, रूमियों को जो है वो शिकस्त हो गई। तो और रूम जो है, रूम एक मुल्क का नाम है और रूम के अंदर जो लोग रहने वाले थे वो कौन लोग थे, रूमी थे। और उनका अकीदा क्या था रूमियों का, वो ईसाई थे। अकीदे के एतबार से वो ईसाई थे। तो अब ये कि अकीदे के एतबार से ईसाई हैं लेकिन उनको शिकस्त हो गई है। और इलाका उनका क्या था, फी अदनल अर्दी। और अदना जो है, आप ये लफ्ज पहले भी पढ़ चुकी हैं कि अदना जो है इसका मानी क्या है, करीब तरीन। क्योंकि आप जो दुनिया का लफ्ज पढ़ती हैं तो उसका भी यही मादा है जो कि इसका मादा है। तो दाल नून या भी और दाल नून वो भी दोनों इसके मादे हैं। तो दाल नून वो है तो क्या है कि जैसे कोई चीज हकीर है, रद्दी है, अदना। और अगर जो है वो दाल नून या है तो क्या है कि झुकना, नजदीक होना, करीब होना। तो जो करीब करीब चीजें होती हैं वो मिली हुई भी होती है ना। तो आप देखेंगे बाज़ लोगों ने फिर इसका तर्जमा ये भी किया हुआ है कि मिली हुई जमीन में, और किसी ने फिर ये तर्जमा भी किया कि करीब की जमीन में, फी अदनल अर्दी, करीब की जमीन में रूमी मगलूब हो गए। तो अल अर्द से मुराद क्या है, मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद शाम और फिलिस्तीन का इलाका है। तो जैसे जो है वो बताया क्या जा रहा है कि रूमी जो हैं वो शाम और फिलिस्तीन के इलाके में मगलूब हो गए। वहुम मिन बादे गलबहिम सयगलिबून, फिर اللہ رب العزت بتا رہے ہیں وہم اور وہ من بعد غلبہم, اور وہ اس کے مغلوب ہونے کے بعد ان کو شکست ہو گئی ہے, وہ مغلوب ہو گئے ہیں, لیکن اس مغلوب ہونے کے بعد پھر ہوگا کیا؟ سیغلبون, انقریب وہ غالب آ جائیں گے, انقریب جو ہے ان کو فتح نصیب ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 2 اور 3 جو ہیں اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس زمانے کے حالات میں جو حالات سے سابقہ درپیش تھا, ایک طرف اللہ تعالی اس پر تبصرہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک بہت بڑی پشین گوئی کر رہے ہیں, ایک نہیں بلکہ 2 پشین گوئیاں کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ 2 بڑی سپر طاقتیں تھیں, ایک روم اور دوسرا ایران. تو جو روم میں رہنے والے لوگ تھے وہ عیسائی تھے, اور ایران میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ مجوسی تھے, وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے. اور روم اور ایران چونکہ 2 سپر طاقتیں تھیں تو ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ جو تھے عیسائی جو تھے یہ کون تھے؟ جو گویا کہ اہل کتاب میں سے تھے, اللہ کو ماننے والے تھے. اور جو ایران کے رہنے والے تھے جو فارسی تھے وہ تھے آگ کی پوجا کرنے والے, تو شرک کرنے والے تھے. تو اہل مکہ جو تھے وہ ایرانیوں کے ساتھ جو تھے وہ ہمدردی رکھتے تھے, کیونکہ مکہ میں بھی 2 قومیں آباد تھی, ایک تھی شرک کرنے والی اور ایک تھی اللہ پر ایمان لانے والی. تو جو شرک کرنے والے مشرکین تھے ان کی ہمدردیاں اور ان کی جو دلچسپیاں تھیں وہ تھیں ایرانیوں فارسیوں کے ساتھ, اور مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ تھی رومیوں کے ساتھ, کیونکہ وہ عیسائی تھے اور وہ اہل کتاب تھے. تو اب ہوا کیا کہ ایرانیوں نے لڑائی کی اور انہوں نے جو ہے اس میں جو روم کے جو عیسائی تھے ان کو شکست دی, اور شکست جو تھی وہ بڑی سخت ان کو شکست دی. تو اور کہتے ہیں کہ ایسی شکست تھی کہ جس پر جو تھے وہ عیسائی جو تھے وہ روم کے وہ بہت ہی اداس بھی تھے, بہت ہی پریشان بھی تھے, حتیٰ کہ جو ہے وہ بیت المقدس سے ان کی صلیب تک بھی وہ اتار کے لے گئے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ سخت شکست تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ میں دعوت دے رہے تھے, آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا, آپ نبی بن چکے تھے, اور آپ کو یہ بات بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 570 جو عیسوی ہے یا جو سن ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس کے 40 سال بعد آپ کی بعثت ہوئی, یعنی 610 میں آپ کو نبوت ملی ہے. اور ادھر روم اور ایران کے لوگ جو تھے وہ 602 سے لے کر 614 تک یہ آپس میں ان کی لڑائیاں جاری تھیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ میں دعوت دینی شروع کی, توحید, آخرت, رسالت کے عقائد بیان کرنے شروع کیے, اور ساتھ ہی قرآن کو پیش کرنا شروع کیا, تو اس میں کیا تھا کہ اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے, دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے, پھر مر جائیں گے, پھر آخرت ہوگی, حساب کتاب ہوگا. اور دوسری طرف جو ارد گرد کے ملگیر حالات تھے, جو بین الاقوامی حالات تھے, اس میں کیا تھا کہ 2 بڑی سپر طاقتیں ہیں, آپس میں ان کی ٹھنی رہتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, اور وہ بھی ایک طاقت ایسی ہے جو اللہ پر یقین رکھتی ہے, وہ کہ اب وہ صلیب اور بہت سی چیزیں آ چکی تھیں لیکن ماننے تو اللہ کو ماننے والے تو اللہ ہی کو تھے نا, اور دوسری طرف شرک کرنے والے تھے جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے. اب ہوا کیا کہ اللہ کو ماننے والوں پر آگ کی پوجا کرنے والے غالب آ گئے, تو مکہ کے مشرکوں نے شور مچا دیا, انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. انہوں نے جو ہے وہ کیا بات کہی کہ مطلب وہ لوگ بھی تو اللہ کو ماننے والے تھے نا, تو اگر ان کو شکست ہو گئی ہے تو اسی طرح یہ جو مکہ میں نیا دین پیدا ہوا ہے, جو حالانکہ وہ دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو بھی جو ہے وہ شکست ہو جائے گی. उन्होंने जो है वो मुसलमानों का मजाक उड़ाना शुरू किया और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के चंद साल बाद ये वाकया हुआ था। कुछ ही अरसा हुआ था आपको नबी बने हुए, आप अपनी दावत बड़े जोरों से दे रहे थे, लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, आखिरत की जो है उसका अकीदा भी बताया जा रहा था। तो अब जब फारिस की हुकूमत ईसाई हुकूमत पर गालिब आ गई तो मुशरिकों को खुशी हुई और मुसलमानों को गम हुआ, और इसमें जो है काफिरों ने इसका हवाला दे देकर कहते थे, वो ये कहते थे कि जिस तरह देखा नहीं वो कि ईसाइयों पर ईरानी गालिब आ गए, बिल्कुल इसी तरह हम इन ईमान लाने वालों पर गालिब आ जाएंगे, हमें भी इन पर जो है वो फतह होगी। तो आप देखें कि ऐसे हालात में, ऐसे हालात मुसलमानों के लिए बड़े ही सख्त है, क्योंकि आपको पता है, आप देखें कि किसी मुल्क में जो है वो दो दो टीमों का मैच हो रहा हो, बहुत से टीमें आ रही हैं जा रही हैं, और उसमें आपकी टीम नहीं भी खेल रही, आपके मुल्क की टीम नहीं खेल रही, दो टीमें खेल रही हैं, लेकिन उसूल अगर मुश्तरिक हैं किसी मुल्क के साथ या तौर तरीके कोई तजारती लेन देन के कोई मुआहदे हैं, तो आपकी हमदर्दियां उस मुल्क के साथ होती हैं, उस मुल्क की टीम के साथ होती हैं, है ना। तो कोई ना कोई कदर मुश्तरिक होती है। तो अब यहां पर जो है, जब इन्होंने मुसलमानों का, मक्का वालों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, तो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हकानियत में, और कुरान हक है, रसूल हक है, उसकी हकानियत में जो है ये सूरत रूम जो है ये नाजिल हुई, और इसमें इसके आगाज ही में ये बात कही गई, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, रूमी जो है इनको शिकस्त हो गई है, ये मगलूब हो गए हैं, फी अदनल अर्दी, मक्का के करीबी जमीन में, करीब का इलाका था ना, इर्द गिर्द का था ना, शाम और फिलिस्तीन का इलाका, मक्का के लोगों तक भी उसकी खबर पहुंच चुकी थी। तो आज करीब की सरजमीन में अगर अहले किताब में से ईसाइयों को शिकस्त हो गई है, वमिन बादे गलबहिम, और इसके बाद के उनको शिकस्त हुई है, इनके मगलूब होने के बाद, सयगलबून, अनकरीब ये लोग जो हैं वो गालिब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने सा का लफ्ज इस्तेमाल किया, सा के माने क्या है, जल्दी ही, इसका कोई तायुन नहीं था कि कितनी जल्दी, कितने सालों बाद, कितने अरसे बाद इनको जो है वो फतह होगी। साथ ये अगली आयत में चार में कहा, फी बिदे सिनीन, चंद सालों में, और बिदे जो है ये गिनती में, अगर बिदे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए बाद वाद ऐन, तो इसके मानी होते हैं कि तीन से लेकर नौ साल, और बास कहते हैं कि तीन से दस तक, दस के अंदर अंदर, तो तीन से लेकर दस के अंदर अंदर चंद ही सालों में फिर होगा क्या, लिल्लाहि अल-अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद, फयौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। तो चंद ही साल बाद जो है मुसलमानों को अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि फिर वो गालिब हो जाएंगे। ये जो है ना फी बिदे सिनीन, इसको आप सयगलबून से मिला कर पढ़े, सयगलबून, वो गालिब हो जाएंगे, कब, फी बिदे सिनीन, चंद ही सालों में। अब आप देखिए कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ने जब ये आयतें सुनी तो मक्का के अतराफ और मुशरिकीन के जो जहां पे वो इकट्ठे होते थे और मजाक उड़ाते थे ना, वहां गए, बाजार में जाकर, उनके मजमों में जाकर ऐलान किया कि तुम्हारे खुश होने का कोई मौका नहीं है, चंद सालों में देखना रूमी ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे। अब आप देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसे ही नहीं सिद्दीक बन गए, कितना यकीन था उनको ना, कितना सच्चा यकीन था। आए तो ऐसे सख्त हालात है, मुसलमानों को मक्का में पीटा जा रहा है, जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, और उनका मुआशरती तौर पर उनका बाइकॉट किया जा रहा है, उनको जॉब से निकाला जा रहा है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, उनको मुल्क बदर होने पर मजबूर किया जा रहा है। पीछे सूरत अनकबूत में आप पढ़ी चुकी कि अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि मेरे बंदो, मेरी जमीन तो बड़ी वसी है, और इनका आपस में जमाना नजूल भी दोनों सूरतों का करीबी ही है। अब ऐसे हालात में जब पिटाई हो रही है और अहले किताब में से ईसाई शिकस्त खा चुके हैं और अल्लाह ताला मुसलमानों की तसल्ली के लिए जब आयतों को नाजिल करते हैं और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन आयतों को लेकर मक्का की गलियों में फैल जाते हैं, ऐलान करते हैं कि तुम नहीं खुश हो, खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखना फी बिद सिनीन कुरान में आ गया है सयगलिबून के रूमी ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे। अब मुशरिकीन ने मक्का में से उबै बिन खल्फ जो है वो उठता है और उठने के बाद जो है वो क्या करता है, वो भी कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया खुदा के दुश्मन तू ही झूठा है और मैं तो इस वाके पर शर्त भी लगाने को तैयार हूं, अगर 3 साल के अंदर रूमी गालिब ना आए तो 10 ऊंटनियां मैं तुम्हें दूंगा, अगर वो गालिब आए तो 10 ऊंटनियां तुम्हें देनी पड़ेगी। और ये कहकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो 3 साल की मुद्दत मुतय्यन नहीं की थी और कुरान ने बिदे सिनीन है ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, तो बिदे सिनीन के मानी तो होते हैं 3 से लेकर 9 साल तक, तुम जाओ और जिनसे ये मुआयदा हुआ है ना इससे कह दो कि 10 ऊंटनियों के बजाय मैं 100 की शर्त आयद करता हूं, मगर मुद्दत 3 साल की बजाय 9 साल आप कर लें। और बाज रवायात से आता है कि 7 साल आपने मुकर्रर की। बहरहाल सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने आप देखें कि कोई घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए कि अब मैं फिर जाके कहूं बात या ये कि भी अब बात मेरी थोड़ी चेंज हो रही है, तो आपके हुक्म की तामील की और उबै बिन खल्फ ने भी इस नए मुआहदे पर जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, राजी हो गया। अब क्या कहते हैं कि ये जो था ना वाकया के तकरीबन 5 साल बाद, तकरीबन यानी हिजरत से 5 साल पहले ये वाकया पेश आया और पूरे 7 साल होने पर गुरूबे मतलब अब क्या था कि कुफर का जो सूरज था वो ऐसा ऐसा फिर गुरूब होने लगा, तो गजवाए बदर के मौके पर जब गजवाए बदर हुई है 2 हिजरी में, तो रूमी जो थे ये ईरानियों पर गालिब आए और उस वक्त तक उबै बिन खल्फ मर चुका था, उबै बिन खल्फ मर चुका था। तो कहते हैं कि जब मुआयदा हुआ था ना तो उबै बिन खल्फ को अपनी बात पर इतना यकीन था, तो और मुसलमान एक एक करके हिजरत भी कर रहे थे, तो उबै बिन खल्फ ने कहा कि मुआयदा तो हो गया और तुम यहां रहे ना, यहां पे हुए ना, तो फिर वो ऊंटनियां कौन देगा, तो ये तय हो गया था कि अगर दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो उनके कबाइल जो है ना कबीले के लोग वो ऊंटनियां देंगे। अब जब जो है वो इधर से मुसलमानों को फतह हुई गजवा बदर में और वही ऐन मौका था जब रूमियों को ईरानियों पर फतह हुई, और जब फतह हुई तो उस वक्त जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने, चूंकि उबै बिन खल्फ मर चुका था, और जाकर उसके खानदान वालों से कहा कि अब मुआयदा पूरा करो, और चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने शर्त के मुताबिक मुआयदा जीत चुके थे, अब उनके खानदान के लोगों ने 100 ऊंटनियां रसूल अल्लाह को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को दी और वो ऊंटनियां लेकर रसूल अल्लाह की खिदमत में गए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़ा सौतु तसद्दक नहीं, ये तो हराम है, इसको सदका कर दो। ये क्यों फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उस वक्त तक जो है ये कुमार की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, जुआ इसकी आयतें नाजिल नहीं हुई थी उस वक्त तक जो है, क्योंकि अभी जुआ हराम नहीं हुआ था, शर्त लगाना भी ये कुमार में आता है, जुए में शामिल होता है, तो इसलिए उस वक्त तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और ऊंटियों की तादाद बढ़ाओ और मना नहीं किया था, लेकिन अब जो है आपने कहा कि अबू बकर ये जो तुमने तुम्हें ऊंट मिले हैं इनको सदका कर दो, तो इससे क्या बात पता चलती है कि कहते हैं कि ये जो जो भी ये जुए की एक शक्ल होती है, शर्तिया जो बात है ना शर्तिया, तो ये जुए की एक शक्ल है और फिर ये इस्लाम में हराम हो गई, तो हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने आपके हुक्म के मुताबिक वो सारे ऊंट जो थे वो सदका कर दिए, आपने नहीं कोई भी अफसरदगी का इजहार किया। और इसी तरह जैसे बाज़ुकात आप देखें कि बैंकों में बाज़ुकात आप बैंक में जैसे जमा पैसे करवाते हैं तो आप तो कहते हैं हमें सूद नहीं लेना, लेकिन फिर भी कुछ पैसे मिलते हैं वो आपको जरूर देते हैं, अब ये भी हो सकता था ना कि जो ऊंट लिए गए जब हराम हो चुका था, ये शर्त के मुताबिक, ये शर्त और ये जुए की शक्ल एक थी, तो ये हराम हो गया था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के पास ही रहने देते, कहते वकर अब ना लो इसलिए कि अब ये हराम हो चुका। नहीं, आपने उनसे ले लिए। तो ये दलील है इस बात की कि बैंकों में से भी जो सूद मिलता है आप नहीं भी लेना चाहते, उनके पास ना रहने दें, क्योंकि उस पैसे को भी वो फिर इस्लाम के खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। उससे लेकर आप किसी भी गरीब को दे दें, लेकिन उस पे सवाब की नीयत मत रखें, लेकिन उनके पास भी नहीं रहना चाहिए। बेशक आप किसी भी जगह पे जैसे कोई रफाए आमा के कामों में लगा दें, कोई गरीब है और उसको दे दें, लेकिन आप ये मत समझें कि आपने कोई जो है वो सवाब की नीयत से आपने कोई इन्फाक किया है, तो गोया कि वो एक ऐसी चीज है जैसे कि ये लिए और फिर दे भी दिए, कुफर के हाथ जो है वो मजबूत ना हो। तो एक जो है वो ये बात हमें पता चलती है, क्योंकि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज़्ज़ुम मिन अमली शैतान। और ये जो था, ये जो शर्त थी, ये जुए कमार ही की एक शक्ल थी जिसको जो है वो हराम करार दिया गया। कैसे ये जुआ हुआ? क्योंकि दो तरफा एग्रीमेंट था, लेन देन और हार जीत की जो शर्त थी ये दोनों ने आपस में मुकरर कर ली थी। तो जुआ में यही होता है ना, कमार में भी यही होता है, तो इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इसको लेने से, कबूल करने से जो है वो मना कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या ऐलान करते हैं कि सयग्लिबून, अनकरीब उनको जो है वो फतह होगी, वो गालिब आ जाएंगे, फी बिदिसनीन, चंद ही सालों में। लिल्लाहिल अम्रु मिन कब्लु व मिन बाद, अल्लाह ही का इख्तियार है। अल अम्र जो है इसके मानी क्या है? अल्लाह ही की हुकूमत है, अल्लाह ही का हुक्म है। मिन कब्लू पहले भी, ईसाइयों को जब शिकस्त हुई और ईरानियों को फतह हो गई, हालांकि वो आग की पूजा करने वाले थे, तब भी हुकूमत अल्लाह की थी, तब भी हुक्म अल्लाह ही का था। और वमिन बाद, और इसके बाद भी, यानी ईरानी जब गालिब आए तो इस वजह से नहीं कि अल्लाह को नाउज बिल्ला शिकस्त हो गई, बल्कि क्या है कि हर हाल में हुकूमत तो अल्लाह ही की है। पहले जिसे फतह नसीब हुई उसे अल्लाह ही ने फतह दी, और बाद में जो फतह पाएगा वो भी अल्लाह के हुक्म से पाएगा। बाद में जो रूमियों को ईरानियों पर फतह मिली, ममिन बादू से मुराद कौन है? रूमी जब बाद में फतह पाएंगे तो अल्लाह की खुदाई में कोई अपने जोर से गलबा हासिल नहीं कर सकता। किसी को वो उठाता है, किसी को वो गिराता है। जिसको वो उठाना चाहता है तो वही उठता है, जिसे वो गिराना चाहता है तो वही गिरता है। तो असल बात जो पता चलती है वो क्या है कि ये जो 9 साल की मुद्दत के अंदर अंदर बात होनी थी ना, लेकिन 7वें साल ही रूमी जो थे वो ईरानियों पर गालिब आ गए, तो इससे मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक तरफ मुसलमान गज़वा बदर में जीते थे, दूसरी तरफ जो है ये अहले किताब में से ईसाई भी जो थे वो जीते थे। तो ये जो फतह थी ये कुरान करीम की सदाकत की एक दलील थी। क्यों? अरब की जमीन के करीब के इलाके जो शाम और फिलिस्तीन हैं, जहां पे ये इतना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ और कुरान मजीद में इतनी देर पहले ये पेशीन गोई कर दी गई, 7 साल पहले, जहां पे जाहिरी तौर पर दूर दूर कोई हालात ऐसे जो थे वो नजर नहीं आ रहे थे। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, क्या आप सच्चे रसूल हैं, उस पर भी ये दलील थी, ये पेशीन गोई, और कुरान की अजमत पर भी ये दलील थी, ये पेशीन गोई, कि कुरान में ये पेशीन गोई दी गई ना। तो कुरान जो है ये सच्ची किताब है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये आगे गई, क्योंकि आपको नबी बनाकर भेजा गया था, तो गोया कि आप सच्चे रसूल हैं। वयौमइज़ यफ़रहुल मुमिनून, और वो दिन होगा जब मोमिन खुश हो रहे होंगे, फरहत खुशी, तो उस दिन मुसलमान जो है वो खुशियां मनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हो, सुफियान सूरी, सुदई रहमतुल्लाह अलैह, वो सब कहते हैं कि ईरानियों पर रूमियों की फतह और जंगे बदर में मुशरिकीन पर मुसलमानों की फतह का जमाना एक ही था। इसलिए मुसलमानों को दोहरी खुशी हुई। तो 624 का जो वक्त था, यही वो साल है जब गजवाए बदर भी हुआ, और यही वो वक्त था जब कैसरे रूम ने इनका, ईरानियों का जो सबसे बड़ा आतिश कदा था ना, उसको भी जाके तबाह कर दिया। सबसे बड़े आतिश कदे को जाकर बिल्कुल ही नेस्तो नबूद कर दिया, सख्त शिकस्त दी ईरानियों को। तो कहते हैं कि हरकल ने दोबारा से अपने रूमियों को, ईसाइयों को जमा किया, और उसने कहा कि ना सिर्फ मैंने पिछली शिकस्त का बदला लेना है, बल्कि वो मेरे इलाके जो है ना, उनको भी मैंने वापस लेना है। तो उसने अपने जो छीने हुए इलाके थे वो भी वापस लिए, उनके बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह कुरान की ये पेशीन गोई जो थी वो सच साबित हुई। और ये जो फतह थी ये हुई क्यों? बिनसरिल्लाह, अल्लाह की मदद से, क्योंकि आयत नंबर 3 से इसका ताल्लुक है, सयगलिबून, वो गलबा पाएंगे। तो गलबा क्यों मिला? बिनसरिल्लाह, अल्लाह की मदद से, गज़वा बदर में हो या फिर रूमियों को जो फतह हुई ईरानियों पर। यंसुरु मन यशा वहुवल अज़ीज़ुर रहीम, अल्लाह नुसरत अता करता है जिसको वो चाहता है, वो गालिब है और वो रहीम है, वो जबरदस्त है और वो रहम करने वाला है। तो यहां पर जो है बड़ी एक खास बात जो है वो सामने आती है। आप आयत नंबर 4 को देखें, आयत नंबर 5 को देखें, तो यहाँ पे जो बात है वो क्या है, जैसे लिल्लाहिल अम्रु मिन कब्लु व मिन बाद, क्या बात पता चली कि कभी किसी को फतह होती है, कभी किसी को फतह होती है, कभी किसी को शिकस्त होती है, कभी किसी को होती है। सूरत आल इमरान आयत 140 में आप ये पढ़ चुकी, वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि ये दिन हम लोगों के दरमियान जो है वो फेरते रहते हैं, कभी किसी कौम पर अच्छे दिन आते हैं, कभी किसी कौम पर जो है ये अच्छे दिन आते हैं। तो असल बात जो है वो क्या है कि अब यहां पे बात जो समझ में आई वो क्या है कि अल्लाह ताला ने रूमियों पर जो है कभी ईरानियों को फतह दी थी, फिर ईरानियों पर रूमियों को फतह दे दी। अहले मक्का गालिब नजर आ रहे थे, लेकिन गजवाए बदर जो यौमुल फुरकान के नाम से मशहूर है, मुसलमान जो थे उनकी एक धाक बैठ गई, और अहले मक्का के बड़े बड़े जो सरदार थे वो बदर के मैदान में ढेर हो गए। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ईसाई तो थे अल्लाह को मानने वाले, उनको क्यों शिकस्त हुई? या आज दुनिया में देखें तो आज मुसलमान जलील हैं, रुस्वा हैं, ख्वार हैं। तो जब वो अल्लाह को मानने वाले हैं, उनका अकीदा सही है, कुरान हक है, रसूल हक, और सारी बातें ठीक, फिर मुसलमानों को शिकस्त क्यों हुई या क्यों हो रही है? क्यों मुसलमान पिट रहे हैं? क्यों उनका खून पानी से भी ज्यादा सस्ता है? क्यों इनकी इज्जतें ही लूटी जाती हैं? उस जमाने में भी ये सवाल पैदा हो सकता था, और आज भी जहन में ये सवाल पैदा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं लिल्लाहिल अम्रु मिन कब्लु व मिन बाद, और यहाँ पे ये कहते हैं यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। इसका दरअसल मतलब ये है कि कौमों के साथ जो अल्लाह का मामला है ना, वो क्या है कि गलबा उसको मिलेगा, मदद उसको मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। और अल्लाह किसके लिए चाहेगा? जो कि अल्लाह की चाहत तो हक और अदल पर मबनी है। जो कौम भी मेहनत करेगी, हाँ वो काफिरी कौम क्यों ना हो, क्योंकि जो कौम जो लोग मेहनत करेंगे इंफरादी तौर पर या इज्तमाई तौर पर, तो वो अफराद और वो कौमें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, वो तरक्की करेंगी, उनको फतह मिलेगी। तो ये है अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला फिर क्या करते हैं, कभी इस्लाम वालों पर भी काफिरों को फतह दे देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? इसलिए कि इस्लाम वाले कहने के लिए इस्लाम वाले हैं, अब उनके अंदर इस्लामी किरदार नहीं है, वो दमखम नहीं है जो एक मुसलमान के अंदर होता है। और जब वो दमखम होता है तो गजवा बदर में भी 79 मुसलमान थे तो काफिरों पर गालिब आ गए। आपने खुद 80 की दिहाई में देखा कि अफगानी जो मुसलमान थे पत्थरों के साथ उन्होंने जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का मुकाबला किया, और तकरीबन 10 साल रूस के साथ अफगानियों की जंग हुई है, और अफगानी जो थे वो जीत गए। लेकिन जीत तो गए, रशिया जो थी इतनी बड़ी सुपर ताकत जो थी वो अंदर ही अंदर उसकी बहुत सी रियासतों में टूट फूट हो गई, वो रशिया से आजाद हो गई, लेकिन जीती हुई जंग मुसलमान हार गए जब कुर्सी के लिए आपस में उनके जो मुख्तलिफ ग्रोह थे और मुख्तलिफ उनकी जो जमातें थी उनमें लड़ाई शुरू हो गई। और वो जो कुर्सी की जंग थी, इकतदार की जंग थी, जो माल और मता की जंग थी, आप देख लें कि एक सुपर ताकत के बाद फिर दूसरी सुपर ताकत, फिर अल्लाह ताला जो है वो क्या करते हैं फिर, है ना, इसी तरह आप इराक को देख लें। तो मुसलमानों के हालात जो ऐसे हो रहे हैं या जब कभी पीछे तारीख में भी हुए, तो उसकी सकूते बगदाद हो या सकूते ढाका हो, मैंने ढाका डूबते देखा, तो ये मशहूर किताब है और भी बहुत से इसके अवामिल हैं, लेकिन असल बात क्या है, दुनिया से मोहब्बत, फिर अल्लाह को पीछे छोड़ देते हैं लोग, तो ये है बात। और फिर जो लोग भी मेहनत करते हैं अल्लाह उनको तरक्की देता है। अब आप देखिए कि इंफरादी तौर पर मुसलमानों में अच्छा किरदार है, इज्तमाही तौर पर जब अच्छा किरदार नहीं है, लीडर अच्छे नहीं है, तो मुसलमान पिट रहे हैं हर जगह। और ये जो मगरिब की दुनिया है, इज्तमाही तौर पर इनका जो निजाम है उसमें टूट फूट हो चुकी है, लेकिन इंफरादी तौर पर इनके पास अच्छे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं और लीड कर रहे हैं। बेशक आप देखें इज्तमाही तौर पर इनका खानदानी निजाम आप देखें, है ना, मुसलमानों का उसकी निस्बत बेहतर है, लेकिन जो इंफरादी तौर पर अब वो लीडर नहीं है जो हमारी इज्तमाहियत को आगे लेके चल सकें और लीड कर सकें। तो यहाँ पे कौमों के अरूज व जवाल का कानून भी बताया जा रहा है कि कौमें कैसे बनती हैं और कैसे बिगड़ती हैं, बिनसरिल्लाह, अल्लाह की मदद से। और अल्लाह की मदद किसको मिलती है, यंसुरू मन यशा, जिसको वो चाहता है, और अल्लाह किसको चाहता है, जो मेहनत करता है। वाहुवल अजीज उर रहीम, वो गालिब भी है, गालिब है, इकतदार वाला है, और वो रहम करने वाला है, उसका हर इरादा अदल और रहमत पर मबनी है। वाद अल्लाह, अल्लाह का वादा, वाद का लफ्ज मसदर है और ताकीद के लिए आया है, ये अल्लाह का वादा है। ला युखलिफुल्लाहु वादहु वलकिन अक्सरन नास ला यालमून, ये अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह अपने किए वादे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करता। वलकिन अक्सरन नास ला यालमून, और अक्सर लोगों को ये बात जो है वो पता ही नहीं है, अक्सर लोग इस बात से नावाकिफ हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है कि मुसलमानों को भी गलबा मिलेगा, उसका वादा वाद अल्लाह, और ईसाई जो है वो गालिब आएंगे, वाद अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, है ना। तो मजदर लाने से ताकीद का मफहूम पैदा हो गया, है ना, आप देखें पहले वाद अल्लाह कहा, फिर ला युखलिफुल्लाहु वादहु, ये कहने की जरूरत तो नहीं थी, ना ताकीद दर ताकीद का मफहूम पैदा कर हुआ। मानी क्या है, अल्लाह अहले ईमान की जरूर मदद करेगा और ये वादा कतई है और अटल है, जाहिरी असबाब महदूद से ही, जाहिरी तौर पर हालात जो हैं वो मसदूद से ही, लेकिन यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, अल्लाह की मदद आकर रहेगी। तो मौजूदा हालात में जो फिलिस्तीन के हालात हैं, हर आंख अश्क बार है, हर दिल खून के आंसू मुसलमानों का रो रहा है, तो अफसुरदा नहीं होना चाहिए, गमजदा नहीं होना चाहिए। ला ताजन इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। इन कुंतुम मोमिनून, अगर तुम ईमान लाने वाले हो, अगर तुम जो है वो अल्लाह पर भरोसा करने वाले हो, तो अब यहां पर जो है एक तरफ अल्लाह ताला तबसरा कर रहे हैं रूमी और ईरानियों की जंग पर, दूसरी तरफ मक्का के हालात पर वाके को जो है वो चश्मा करके बिठा कर मुसलमानों के फतह और गलबा की नवीद सुना रहे हैं। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, अक्सर लोगों को इल्म नहीं है। यालमून ज़ाहिरा मिन अल हयात दुनिया, वो दुनिया की जिंदगी में ज़ाहिरी ज़ाहिरी जानते हैं, वो ऊपर ऊपर देखते हैं, दुनिया की जिंदगी का सिर्फ जाहिरी पहलू जो है, जाहिरी हालात हैं वो देखते हैं, बातिन की तरफ उनकी निगाह नहीं जाती। वो देखते ही नहीं है कि दुनिया के बाद आखिरत भी होनी है, दुनिया के आगे नहीं सोचते, जिंदगी के बाद मौत के बारे में नहीं सोचते। यालमून ज़ाहिरन मिन अल हयात दुनिया वहुम अनिल आखिरतिहुम गाफिलून, और वो आखिरत से खुद ही गाफिल हैं। آخرت کی ان کو فکر ہی نہیں ہے. یہاں پہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے. اور کیا دلیل دی ہے؟ کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے رسول پر اور آخرت پر اور ایک اللہ پر اور قرآن پر کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے ظاہری پردے پر نگاہیں جما کر بیٹھ گئے ہیں. دنیا کا حسن، دنیا کی رونقیں، دنیا کی دولت، دنیا کا مال و متاع، دنیا کے اندر جو کچھ ہے بس انہوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا بنا کر بیٹھ بن گئی ہے، یعنی ان کا اوڑھنا اور بچھونا بن گئی ہے، اور آخرت سے وہ غافل ہے، غفلت ہے نا. تو آپ دیکھیں اصل علم تو قرآن کا علم ہے نا، لیکن آج بھی یہاں کی دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے دنیا کو کتنا ایکسپلور کیا ہوا ہے نا، کتنی زیادہ چوائسز ہیں بچوں کے پاس. جیسے پچھلے دنوں ایک ماں بڑی پریشان تھی کہ بچے نے پیسے بھی اتنے ضائع کیے اور سیمسٹر بھی ضائع کیے. کبھی کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا، کبھی کہتا ہے انجینئر بنوں گا، کبھی کہتا ہے کمپیوٹر میں جاؤں گا، اور پھر کیا ہے کہ اپنے سبجیکٹ چینج کرتا ہے. اور بہت سے لوگ آپ دیکھیں یہاں پہ کمپیوٹر میں پڑھنے کے بعد اپنا سبجیکٹ چینج کر لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ بزنس میں چلے جاتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر میں، یعنی زندگی اسی کے گزارے ہیں کہ. اور ایک ایک علم نہیں، کئی کئی علم کی ڈگریاں ان کے پاس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام اسے منع کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس العلم کی ڈگری نہیں ہے، قرآن کی ڈگری نہیں ہے، قرآن کی سمجھ نہیں ہے، تو ظاہر پر ہی ہم بھاگ رہے ہیں نا، ظاہر کے پیچھے دھوپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. دھوپ تو کبھی ہاتھ میں نہیں آئے گی ہے نا، تو کیوں نہ سورج کو پکڑا جائے. تو سورج کیا ہے؟ سورج اسلام ہے نا. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. یہ ہے مسلمانوں کا حال. ابھی آپ دیکھ لیں جیسے مثلا سکن جو ہے، میری ابھی پرسوں کسی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سکن میں وہ کوئی کورس کر رہی ہیں، اور ویسے انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے جرنلزم میں، اور بہت اچھا اس کا سکوپ ہے، اور وہ ٹاپ بھی کر رہی ہیں. تو میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ تو موجودہ دور میں ظاہری طور پر آپ کتنے خوبصورت لگتے ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات تصویروں کے ذریعے سے کوئی شخص اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. پچھلے دنوں ایک عورت نے بتایا کہ لڑکی کو جب دیکھا تو تصویر دیکھی اور رشتہ کر لیا. امریکہ میں رشتہ آیا تھا کینیڈا سے، تصویر دیکھی رشتہ کر لیا، تو بعد میں جب لڑکی کو دیکھا لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن کہا کہ جو ہمیں تصویر دکھائی گئی بڑی خوبصورت تھی، تو ہم نے تصویر پر یقین کر لیا ظاہری طور پر نا. اسی طرح اب سکن جو ہے اس کے لیے کتنے لوشن، کتنے بیوٹی پارلر کی ایک دنیا ہے، حتیٰ کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی آپ کا کیا کریں اور کیا نہ کریں نا. تو انسان ظاہری طور پر، میں نے پچھلے دنوں اخبار میں جب ایک یہ خبر پڑھی بڑی میں اداس ہوئی کہ کوئی عورت بہت موٹی تھی، 40s میں تھی، زیادہ عمر نہیں تھی، 30 سے اوپر تھی، 40 سے نیچے تھی، موٹی بہت تھی. تو اس کو وہ پتا چلا کہ جسم میں سے فیٹ نکالی جا سکتی ہے، اور جب اس نے اپنا آپریشن کروایا تو جو تھا وہ اسی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور باقاعدہ اس کا پورا بتایا ہوا تھا اخبار نے، پورا اس کا بتایا ہوا تھا کہ کہاں کہاں اس کے کٹ لگائے گئے، اور کٹ زیادہ لگ گئے یا اس ڈاکٹر سے کچھ ہوئی غلطی ہے، جو بھی. یہ کینیڈا کا واقعہ پڑھا، اس کے علاوہ امریکہ میں بھی ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، اور ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہوں گے. تو اب کیا کہ ظاہری طور پر ہم چاہتے ہیں ہم خوبصورت لگے نا، اور یہ نہیں پتا کہ اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا. تو حسن کو دیکھ لیں، دولت کو دیکھ لے، دولت جمع کرنے کے لیے ظاہری طور پر بے شک رشوت دینی پڑ جائے، بے شک جو ہے وہ حرام لینا پڑ جائے، چوری ڈاکہ کرنا پڑ جائے، ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ہم خوش و خرم ہوں گے، دل میں بے شک سکون نہیں ہے. آخرت میں کیا ہوگا، دنیا کے بعد آخرت میں کیا ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں، بس دنیا کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. میں نے خود جیسے جب میں نے ماسٹر کیا تو الحمدللہ عربی میں جو ایم اے تھا وہ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد ہمارا پبلک سروس کمیشن کا جو تھا نا وہ امتحان تھا، اور میرا انٹرویو تھا. جب میں انٹرویو میں گئی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ 8-6 8-10 اس طرح سے لوگ بیٹھے تھے جو انٹرویو لے رہے تھے، چہرے کا پردہ کیا ہوا، سب سوالوں کے جواب دیے، اور سب کے ماشاء اللہ ٹھیک جواب دیے، فرسٹ ڈویژن بھی تھی، جی سی کا، گورنمنٹ کالج لاہور کا، بہت सख्त मेरिट होता है, बहुत अच्छा। तो उनका प्रोफेसर था कोई, मुझे कहने लगे, जो भी वो सवाल पूछे जवाब मैं देती गई, तो कहने लगे कि जरा बड़े भी थे शायद वो उस वक्त, उसके प्रेसिडेंट थे जो बोर्ड था ना उसके, वो इंचार्ज थे। कहने लगे कि आप चाहती हो कि आप जो है वो, आपको 2 ही सीटें थी कि आपको मिल जाए लेक्चरशिप, तो मैंने कहा जाहिर है मैं चाहती हूँ। तो कहने लगे कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना हमारे पास, तुम देख लो कि तुम्हारे तुम्हें हमने नंबर पूरे दिए, हमारे पास तुम पास हो, ये जो इंटरव्यू है इसमें तुम पास हो, लेकिन जो है हमारा काम बस यहाँ पे रिजल्ट बनाना है, लेकिन सिफारिश ऊपर चाहिए, तुम चाहती हो तो मुझसे आकर ना मिल लो। मुझे उन्होंने ये अल्फाज तक कहे, ये अल्फाज तक कहे कि तुम आओ और आके मुझसे मिल लो, क्योंकि मतलब वरना फिर ये तुम्हें सीट नहीं मिल सकती ना। और वाकई कुछ दिनों बाद जो मेरी ही क्लास की सेकंड डिवीजन पास लड़की थी, उसकी बहुत पहुंच थी, वो लेक्चरशिप बन गई, और हमारी तो लेक्चरशिप की कोई कॉल नहीं आई, है ना। तो क्या है, जाहिरी तौर पर, मतलब तो जाहिरी तौर पर मेरिट पर अगर एक शख्स पूरा उतरता है उसको ना मिले, और जो मेरिट पर नहीं उतरता उसको मिले, तो आपको क्या होता है, आपको फिर अफसोस होता है। और आप बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि मेरे भी कोई जराये होते कि मैं भी ऐसे हासिल सीट को कर लेता, लेकिन फिर क्या चीज आपको रोकती है कि दुनिया कुछ भी नहीं है ना, दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो असल क्या है, वहुम अनिल आखिरती हूँ गाफिल, उनके आखिरत से जब इंसान गाफिल होता है ना, फिर वो ओछे हथकंडे या रिश्वत या और बहुत से रास्ते जो है वो इख्तियार करता है। तो दुनिया की जिंदगी में इंसान पर नशेबो फराज तो आते हैं, लेकिन ईमान डगमगाना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अवलम ये तफक्करू फी अनफुसिहिम, अब यहां से अल्लाह ताला कायनात से दलील दे रहे हैं। कायनात से अल्लाह ताला ने दलील किस लिए दी है, कि कायनात को अल्लाह ने बामकसद बनाया है, तो इंसान को भी बामकसद जिंदगी बसर करनी चाहिए। और कायनात का मकसद क्या है, कायनात कर क्या रही है, अल्लाह की बंदगी कर रही है ना, तो इंसान जो अशरफ अल मखलूकात में से है उसको भी अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। अवलम ये तफक्करू फी अनफुसिहिम, अल्लाह ताला कहते हैं क्या इन्होंने कभी अपने ऊपर भी गौर व फिक्र नहीं किया। बड़ी खूबसूरत दलील दी है, बाहर निगाह दौड़ाने की जरूरत नहीं है, अगर वो अपने वजूद पर निगाह दौड़ाते तो अंदर ही दलाइल का एक अंबार इनको मिल जाता है ना। एक तो है ना, जमीन को देखो, आसमान को देखो, जमीन और आसमान तो बात की बात है, खुद बस अपने सर को नीचे झुकाओ, अपने वजूद पर निगाह दौड़ाओ, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अब आप देखें ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, और इन उंगलियों को आप कभी प्याला बनाते हैं, आप इसमें पानी पीते हैं, कभी इसको प्लेट बनाते हैं, इस पर खाना रखते हैं और आप इसे खाते हैं, है ना। और ये 5 उंगलियां जो अल्लाह ने बराबर पैदा नहीं की, तो क्या है कि इसमें भी अल्लाह ताला की एक हिकमत है। 5 उंगलियां अगर एक जैसी होती तो जो काम हम जैसे कर लेते हैं, धागे को से गिरा लगा लेना या कढ़ाई कर लेना या कोई जैसे ग्रिफ्ट रखना, होल्ड रखना, कभी इनसे हम स्पून का काम लेते हैं, कभी प्लेट का, कभी प्याले का, कभी चम्मच का काम लेते हैं, कभी हम इनसे जो है किसी चीज को कूटते हैं, डिफरेंट हम काम लेते हैं ना। तो और कुछ नहीं, हाथों पे ही हम उंगलियों पे गौर कर लें। अब आप देख लें इसकी जो लकीरें हैं, लाइनें हैं, अगर हर जगह मुकम्मल सेल्स होते तो ये लाइनें भी नजर ना आती, ये पोरे ना बनती, है ना। फिर आप देखें ये नाखून है, एक ही तरह का हम जो है वो खाना खाते हैं, एक तरह का खाना, जमीन में किसान एक बीज बोता है, एक सूरज है जो उसको रोशनी देता है, एक पानी है जो उसको मिलता है, एक हवा है जो चलती है, एक तरह की, लेकिन जो बीज निकलते हैं, फल मीठे भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब्ज भी होते हैं, रेड भी होते हैं, अंगूरों को देख लें, अनारों को देख लें। तो अच्छा, वो जो फल हम खाते हैं, फल तो एक तरह का, खाना एक तरह का आप खाते हैं ना, जो भी खा रहे हैं आप, एक फर्द खा रहा है एक तरह का खाना, लेकिन उसी खाने को खाकर कुछ हमारा खाना जो है वो आंखों को जाके लगता है तो आंखें बन जाती हैं, कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं जो आंखों का काम करते हैं, कुछ दिल में जाते हैं, कुछ हाथों में, कुछ पाँव में, कुछ सर में, कुछ हड्डियां बन जाते हैं, कुछ खून बन जाते हैं, डिफरेंट, और कुछ फुजलात बनकर जाया भी हो जाता है। तो क्या है, اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے نفس پر، اپنے وجود پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کیا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک گھر میں جو افراد پیدا کیے، آپ دیکھیں ایک ہی والدین کی اولاد ہے، کتنی مختلف ہوتی ہے. ایک سست ہے، ایک چست ہے، ایک بڑا ذہین ہے، ایک بڑا کند ذہن ہے، ایک جو ہے وہ کہتا ہے بس بیٹھے بیٹھا ہوا ہے بیل کی طرح کہ بس مل جائے گا جو قسمت میں ہے، دوسرا دن رات 3 دن جاب کر رہا ہے. ایک ہی والدین کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک لمبے قد کی ہے، ایک چھوٹے قد کی ہے، یقین نہیں آتا ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ 2 بہنوں کے ایک سفید رنگ ہے، ایک کا کالا رنگ ہے، ایک ماں پہ گئی ہے، ایک باپ پہ گئی ہے. میں تو اکثر دیکھتی ہوں تو دیکھتی رہ جاتی ہوں، بڑا مجھے لطف آتا ہے ویسے بیٹھ کر غور کرنے میں. تو اصل بات کیا ہے کہ غور و فکر جب انسان کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو پھر اللہ کو پا لیتا ہے، پھر آخرت کی تیاری کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ نے یہ اتنا نظام جو اتنے ڈسپلن سے ضبط سے چل رہا ہے، اللہ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. کیا کہا؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے کبھی آپ اپنے اوپر غور و فکر نہیں کیا؟ پھر کہا ما خلق اللہ السماوات والارض، جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان، اس کو نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمن، اور ایک وقت مقرر کے لیے. تو اجل جو ہے جو مدت ہے، مسمن مقرر ہے. تو جو بھی اللہ نے یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مدت جو ہے وہ مقرر کر دی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ غور و فکر کرنا یہ مسلمانوں کی، مومنوں کی صفت ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو غور و فکر کرنے والے پھر جہنم کے آگ سے بچنے کی فکر کرتے ہیں. یہ بھی آپ پہلے قرآن میں پڑھ چکی ہیں نا. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل مکہ نشانیاں مانگتے ہیں، اہل مکہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں ایمان لانے کے لیے. ان کا اپنا وجود نشانی ہے، آسمان اور زمین نشانی ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ نشانی ہے، اور سارا کچھ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور حق کے معنی کیا ہیں؟ کہ کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اس کا ایک خاص وقت مقررہ ہے. سورج، چاند، ستارے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی جو حمد اور تسبیح بیان کر رہا ہے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ القاریہ ملقاریہ، پھر ایک وقت آئے گا الغاشیہ، پھر ایک وقت آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور پھر ہوگا کیا؟ حساب کتاب. وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر بہت سے لوگ، انسانوں میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اب دیکھیں انسان کے وجود اور کائنات سے، کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخرت پر دلیل دی ہے. اور آخرت پر جو دلیل دی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے، اگر اس کی ابتدا ہے تو اس کا اینڈ بھی ہے، جب اینڈ ہوگا تو ہوگا حساب کتاب. تو اے انسان، تو سوچتا نہیں کہ تو بھی مرے گا اور اللہ کے پاس جائے گا، تو اللہ کی ملاقات کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی ملاقات کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ کہ آخرت کی تیاری نہ کرنا، آخرت کی فکر نہ کرنا. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہیں بتا رہے ہیں کہ جو یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کو ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں، آزمائشوں میں چیخ اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر کیوں یہ آزمائش ڈال دی. ثابت قدم نہیں رہتے، صابر نہیں ہوتے، توکل نہیں کرتے. تو کیا بات سامنے آتی ہے کہ دنیا جو ہے اس کو ہمیں اپنا مطمئن نظر نہیں بنانا چاہیے. دنیا کے غم بھی ہمیشہ نہیں ہے، دنیا کی خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ غموں میں صبر، خوشیوں میں شکر، اور ہر حال میں جو ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں. میرے اور آپ کے سارے غم بدل جائیں گے. اینک لگا لیں. کون سی اینک؟ جس میں صبر اور شکر ہو، جس میں، یعنی ایک اینک جس سے دنیا رنگین نظر آئے، جس میں شکوے شکایتوں کی بجائے ہم کہیں کہ الحمدللہ بڑے اچھے حال میں ہوں، میں بڑے اچھے دن ہیں میرے. اولاد نہیں ہے तो भी मैं अपनी एक तालबिल को जानती हूँ, न्यूयॉर्क में है माशाल्लाह, कभी मैंने उसको गमजदा नहीं देखा, बिल्कुल मैं आपको गवाही देती हूँ, अब तक मेरा उनसे रابطہ है, हमेशा हंसते मुस्कुराते, उससे ज्यादा मुस्कुराने वाला किसी को नहीं देखा। तो मैं अक्सर कभी इस बात पे सोचती भी हूँ कि इतना बड़ा एक गम है उसके पास, लेकिन कभी वो कभी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं किया, कभी भूल कर भी नहीं उसने मुझे कहा कि बाजी मुझे इसकी बड़ी परेशानी है ना। तो क्या है, दिन रात अल्लाह की खिदमत में उसने अपने आप को वक्फ किया हुआ है, तो क्या है, अल्लाह के फैसले पे साबिर और शाकिर, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं बनाई, इंसान एक जैसे नहीं बनाए, अल्लाह ताला कह रहे हैं किसी को देता हूँ किसी को नहीं देता, किसी को खुशियां ही खुशियां, किसी को गम ही गम, किसी को बेटियां ही बेटियां, किसी को बेटियां भी नहीं देता, किसी को बेटे बेटियां मिला के देता हूँ, किसी को जॉब देता हूँ किसी को नहीं देता, किसी के हर घर में हर बंदे के पास जॉब है, किसी के घर में सब बेकार बैठे हैं। अब अल्लाह की मर्जी है, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उसे नाराज है। तो क्या करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाना चाहिए, अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करनी चाहिए, अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। यह है सारा पैगाम कि अल्लाह की मुलाकात की तैयारी करें। अफसोस के लोग आखरत का इनकार करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है तारीख से दलाइल देते हैं और अहले मक्का को कहते हैं कि आप अपने मुल्क की तारीख पर, अरब की तारीख पर देखो तो सही, गौर तो करो। अफलम यसीरू अवालम यसीरू फिल अर्दी, क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं, इन्होंने जमीन में सैर नहीं की। फयन जरू कि पस वो देखते, कई फकैन आकिबतुल्लजीना मिन कबलहिम कि कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। कौन से लोग, कौम आद, कौम समूद, कौम मदियन। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने आखरत का इनकार किया था, ये सिर्फ अहले मक्का ने थोड़ी किया है, पहले कौम आद, कौम समूद, कौम मदियन ने भी आखरत का इनकार किया था, पूरी पूरी कौमें थी उन्होंने इनकार किया। और वो थे कैसे, कानू अशद्द मिनहुम कुव्वतन, वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं वो इनसे ज्यादा जोरावर थे, कैफियत बता रहे हैं कि इनकी कुव्वत, जो अहले मक्का अपने आप को कहते थे ना बड़े कवि हैं, बड़ी माल और औलाद है हमारे पास, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो तो उनकी कैफियत क्या थी कि जमीन में बड़े कुव्वत वाले थे। अशद्दा मिन्हु कुवा, अशद्दा देखें शिद्दत बयान करने के लिए है, जवानी के लिए की शिद्दत बयान करने के लिए भी आता है, अशुद्धा पीछे पड़ चुकी, इसी तरह कुव्वत मजबूती। तो बड़ा उनका अजीम जिस्म भी उनका बड़ा मजबूत था, डेल डोल वाले थे, कुव्वत ताकत उनके पास बहुत थी। नंबर एक वकानु अशद्दा मिनहु कुव्वतन, नंबर दो व असारु अर्दा, और उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा। असारू जो है सावोरा से, इसके मानी होते हैं मट्टी जो उड़ जाती उड़ती है, फैल जाती है, मुंतशिर हो जाती है, और फिर इसका इतलाक जरात के लिए हल चलाने पर होने लगा। बैल को भी सौर कहते हैं क्योंकि बैल के जरिए हल जोता जाता है, मट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है। तो अब जमीन को उधेड़ना और जमीन जो है उसको खोदना, तो उसका मतलब क्या है कि जब जमीन को खोदा जाएगा तो जमीन में हरियाली होगी, जब जमीन को खोदा जाएगा तो जमीन में पानी आएगा, जमीन से नहरें आपाशी सैराब करेंगी, जब की जाएंगी जमीनें और फसलें, होगा क्या कि जमीन सोना उगलने लग जाएगी, बहुत तरक्की होगी, है ना, ज़राअत पेशा। फिर इससे क्या है, मादनियात निकालना, डिगिंग करना, जिसमें मुख्तलिफ जैसे तेल निकालना है या कहीं हीरे जोहरात की कोई कान मिल गई है, कोई खजाना मिल गया है, तो जो कुछ भी है उसके लिए जमीन को खोदना तो पड़ता ही है ना। और फिर क्या है कि जमीन को खोद कर नीचे से महल की बुनियाद रखी जाए और ऊपर ऊपर बड़े बड़े महल तामीर किए जाए। वासारुल अर्दा, और उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा, खूब उन्होंने जरात की, खूब उन्होंने मादनियात निकाली, खूब नहरें बनाई। वह अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा, फिर तीसरी बात कही, वह अमरूहा और उस उन्होंने इसको आबाद किया था, हाकि जमीर जमीन के लिए आई है, और उन्होंने जमीन को आबाद किया था। ऐन मा आयन मीम रा जो है इसका मतलब होता है इमारत के लिए भी आता है, उम्र के लिए भी आता है। उम्र क्या, उसकी इतनी उम्र है, यानी इतनी देर तक रूह जिस्म को आबाद रखेगी, ये इमारत है ना। तो इसी से उम्रा, उम्रे में क्या होता है कि उम्रे में आप जो हैं वो हरम को आबाद करते हैं, अल्लाह की जमीन को आबाद करते हैं। वअमा रूहा, और उन्होंने उसको आबाद किया था, यानी कौम आद थी, समूद थी, मदियन थी, या मलका सबा की कौम, वो भी ज़राअत पेशा थी। बड़े ही उन्होंने जो थे ब्रिजेस आपाशी के जरिए निजाम को बेहतरीन बनाया हुआ था, या कौम आद थी और समूद थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वह अमारूहा, और उन्होंने आबाद किया था इस जमीन को, अक्सरा मिम्मा अमारूहा, अक्सरा ज्यादा आबाद किया था, मिम्मा इससे ज्यादा और किसी ने नहीं किया था, जितना आबाद उन्होंने किया था, अक्सरा मिम्मा अमारूहा, इससे ज्यादा किसी और ने आबाद नहीं किया था। तो ये कौमें जो थी बड़ी तरक्की याफ्ता थी, बड़ी ही जो थी वो दुनिया में इन्होंने तमदनी तामीरी जो काम थे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बड़ी तामीरी सलाहियतें थी इनके अंदर। लेकिन हुआ क्या कि दुनिया में तरक्की कर भी ली, संत और हरफत में तरक्की कर भी ली, तमद्दुन में आगे बढ़ भी गए, लेकिन वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, फिर उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए। अब आप देख लें कि अंबिया की आमद का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, तो क्यों जिक्र किया जा रहा है कि अंबिया जब उनके पास आए तो उन्होंने क्या किया, फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ने फिर उन पर जुल्म नहीं किया था, अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला नहीं था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। फिर उन्होंने अल्लाह के जो पैगंबर थे, अल्लाह के जो रसूल थे, जो बय्यिनात खुले खुले मौजज़ात दलाइल निशानियां लेकर आए थे, उन्होंने उनका इनकार कर दिया। तो अहले मक्का क्या कर रहे थे, निशानियां मांग रहे थे, मौजज़ात का मुतालबा करते थे। तो निशानी क्या थी, कुरान, बय्यिना क्या था, रसूल। तो जब रसूल और कुरान आ गया तो अहले मक्का ने उसका इनकार किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ये जो पिछली कौमें हैं जो तबाह बर्बाद हुई, अल्लाह ने उनको सफाए हस्ती से मिटा दिया, अल्लाह ने नहीं उनके साथ ज्यादती की, अल्लाह तो है ही अदल करने वाला, पीछे आप पढ़ ही चुकी वाहुअल अजीजुर रहीम, है ना। तो अल्लाह तो किसी पर भी जो है वो जुल्म नहीं करता, लेकिन जो ज्यादती करता है उसके लिए वो अजीज है, जो तौबा कर ले मुसलमान हो जाए उसके लिए वो रहीम है। तो उन लोगों ने अपने ऊपर जो है वो जुल्म किया। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनके जुल्म की तफसील क्या थी, सुम्मा काना आकिबत अल्लज़ीना, फिर आखिरकार उन लोगों का अंजाम हुआ, क्या अंजाम, असाउसुआ, उन्होंने बुराइयां की बुरी। अब आप देखें कि असाउ जो है यहां पे इस्तेमाल हुआ है, और असाउ जो है इसके मानी क्या है, इसके मानी है कि जिन्होंने बुराई की, ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और इसके बाद सुआ ये जो है ये इस्म है, नाउन है, एक फेल इस्तेमाल हुआ है और एक नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो सुआ ये मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, और मतलब क्या है कि उन्होंने बहुत सी बुराइयां की। अब इतना ही काफी था कि असाऊ उन्होंने बुराइयां की, लेकिन असाउसुआ कि उन्होंने जो है वो बहुत सी बुराइयां की, एक बुराई नहीं की, रसूल को झुठलाया, अल्लाह की निशानियों को झुठलाया, जो बुरी बातें थी, जो बुरे काम थे उन्होंने उनका जो है वो साथ दिया। तो जुल्म और ज्यादती की आखिरी हद है अन कज़्ज़बु बि आयातिल्लाही, कि उन्होंने अल्लाह की आयात को झुठला दिया, वकानू बिहा यस्तहज़िऊन, और वो इनका मजाक उड़ाते थे। तो आप देखें कि कौमों को जो तबाह बर्बाद किया गया तो क्या बातें सामने आईं, नंबर एक जुल्म करना, और जुल्म क्या था कि जब रसूल उनके पास बय्यिनात लेकर गए तो उन्होंने उसको झुटला दिया, रसूल को, निशानियों को, तौहीद को, अकायद को, सब बातों को, नंबर वन। नंबर टू असाउसुआ, हर तरह की बुराई जो है ना फिर इसके अंदर आ जाती है, एक बुराई नहीं की, बेशुमार उन्होंने बुराइयां की, बेशुमार उन्होंने گناہ کیے، بے شمار انہوں نے اللہ کی جو ہے وہ نافرمانیاں کی. تیسری بات کیا ہے، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے، کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو وہ جھٹلاتے تھے. چوتھی بات، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو غور و فکر کی دعوت دی، نمبر ایک اپنی ذات، اپنے نفس پر، نفوسہم، نمبر دو کائنات کی تخلیق پر، ہے نا، نمبر ایک انفسہم، نمبر دو کائنات کی تخلیق، نمبر تین تاریخ کے دلائل. تو غور و فکر کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے اتنی ترقی کی تھی اب وہاں پہ کھنڈر ہیں، اب وہاں پہ نشان عبرت ہیں، ڈیڈ سی، کچھ بھی نہیں ہے. تو اے مسلمانوں کیا کرو، یعنی آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے عملوں کو بہترین کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، سرکشی میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ بد اعمالیوں کی سزا بھی اتنی ہی بری ہوتی ہے جتنے کہ اعمال برے ہوتے ہیں. اساء السوء اگر ہے تو پھر سزا بھی بڑی سخت ہوگی.